अध्याय 56 एली और उसके पुत्र। यह अध्याय पर आधारित है। एली इज़राइल में याजक और न्यायाध्यक्ष था। परमेश्वर की प्रजा में वो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पद पर आसीन था। उसे याजकता के पवित्र कार्यों के लिए ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था और देश पर उच्चतम न्यायिक अधिकारी के स्थान पर बैठाया गया था, और इस कारण उसे उदाहरण के रूप में देखा जाता था और इज़राइल के सभी घराने उससे प्रभावित थे। हालांकि उसे प्रजा पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वो अपने ही परिवार को सुशासित नहीं कर सका। एली एक क्षमाशील पिता था। शांति और सहूलियत से लगाव रखते हुए उसने अपने बच्चों की बुरी आदतों और तीव्र अभिलाषाओं पर रोक लगाने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया। उन्हें दृढ़तापूर्वक टोकने या दंडित करने के बजाय वो उनकी इच्छा के आगे झुक जाता या उन्हें उनके रास्ते पर जाने देता। अपने पुत्रों की शिक्षा को अपना सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व समझने के बजाय उसने इस विषय को प्राथमिकता नहीं दी। इज़राइल के याजक और न्यायाध्यक्ष को परमेश्वर द्वारा उसके सुपुर्द किए गए बच्चों को संचालित और नियंत्रित करने के कर्तव्य के बारे में अंधेरे में नहीं रखा गया था, लेकिन एली ने इस कर्तव्य का अनुपालन नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से उसे अपने पुत्रों की इच्छा के विरुद्ध जाना होता और ये अनिवार्य हो जाता कि वो उन्हें रोके या दंडित करे। इस पद्धति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भयानक परिस्थितियों पर विचार किए बिना उसने अपने पुत्रों को मनमानी करने दी और उस कार्य की उपेक्षा की जो उन्हें जीवन के कर्तव्यों और परमेश्वर की सेवा टहल के लिए सुयोग्य बनाता। परमेश्वर ने अब्राहम के संदर्भ में कहा था, मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और न्याय और परख करते रहें। उत्पत्ति 18:19। लेकिन एली ने अपने पुत्रों को उसे नियंत्रित करने की अनुमति दी। पिता अपने पुत्रों की प्रजा बन गया। आज्ञा उल्लंघन का श्राप उसके पुत्रों की कार्यविधि में भ्रष्टाचार और बुराई की छाप से स्पष्ट था। वे ना तो उचित रूप से परमेश्वर के चरित्र को और ना ही उसकी व्यवस्था की पवित्रता को सराहते थे। उसकी सेवा टहल करना उनके लिए साधारण बात थी। बचपन से वे मिलाप वाले तंबू और उसकी विधियों के अभ्यस्त थे, लेकिन और अधिक श्रद्धायुक्त होने के बजाय वे उसकी पवित्रता और महत्ता का आभास तक खो चुके थे। पिता ने उसके अधिकार के प्रति उनके आदर के अभाव को सही नहीं किया, ना ही पवित्र स्थान की औपचारिक विधियों के प्रति उनके अनादर पर रोक लगाई। और तब वे प्रौढ़ावस्था में पहुंचे तो वे विद्रोह और संदेहवाद के घातक फलों से परिपूर्ण थे। हालांकि वे धर्मकिया के लिए पूरी तरह से अयोग्य थे, उन्हें परमेश्वर के सम्मुख सेवा टहल करने के लिए मिलाप वाले तंबू में याजकों का स्थान दिया गया। परमेश्वर ने बलि की भेंट चढ़ाने के संदर्भ में विशेष निर्देश दिए हुए थे, लेकिन इन दुष्ट पुरुषों ने परमेश्वर की सेवा टहल में भी प्रभुत्व के प्रति अनादर दिखाया और जिस भेंट को अत्यंत नियमित रूप से चढ़ाया जाना था उसके नियमों पर ध्यान नहीं दिया। मसीह की मृत्यु की ओर संकेत करते हुए ये बलिदान लोगों के हृदयों में आने वाले उद्धारकर्ता में विश्वास को बनाए रखने के लिए चढ़ाया जाता था। इस कारण ये अति आवश्यक था कि भेंट से संबंधित परमेश्वर के निर्देशों का नियमित रूप से पालन किया जाए। मेलबलि विशेष रूप से परमेश्वर के प्रति धन्यवाद की अभिव्यक्ति थी। इन भेंटों में वेदी पर केवल चर्बी को जलाया जाता था, याजकों के लिए एक निश्चित विशेष भाग अलग किया जाता था, लेकिन बड़ा वाला भाग भेंट देने वालों को लौटा दिया जाता था, जिसे वह एक बलिदान संबंधी प्रीति भोज में अपने दोस्तों के साथ खाता था। इस प्रकार धन्यवाद और विश्वास में उनके मनों को उस महान बलिदान की ओर आकर्षित करना था जो जगत को पाप मुक्त करने आने वाला था। एली के पुत्रों ने इस सांकेतिक विधि की औपचारिकता को समझने के बजाय केवल इस बात पर विचार किया कि वह इसको आत्मसंतुष्टि का साधन कैसे बना सकते थे। उनके लिए आवंटित मेल बलि के अंश से असंतुष्ट उन्होंने एक अतिरिक्त भाग की मांग की, और वार्षिक पर्वों के समय चढ़ाई गई बहुसंख्यक भेंटें याजकों को लोगों के सौजन्य से स्वयं को धनवान बनाने का अवसर प्रदान करती थीं। उन्होंने न केवल अपने अधिकार से अधिक की मांग की, परमेश्वर को भेंट के रूप में चढ़ाई गई चर्बी के जल जाने तक रुकने से भी इनकार कर दिया। वे लगातार अपने मनचाहे भाग की मांग करते, और यदि उन्हें मना किया जाता तो वे उसे बलपूर्वक लेने की धमकी देते। याजकों की ओर से इस श्रद्धाहीनता ने विधि को उसकी पवित्र और विधिवत महत्ता से वंचित कर दिया और लोगों ने यहोवा की भेंट का तिरस्कार किया। जिस महान प्रतिरूपक बलिदान की उन्हें प्रतीक्षा करनी थी वह अब मान्य न रहा। उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। इन अधर्मी याजकों ने अपने भ्रष्ट और नीचतापूर्ण कार्यों के द्वारा अपने पवित्र कार्यभार का निरादर किया और परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन भी किया, और ये परमेश्वर के पवित्र मंडप को अपनी उपस्थिति से दूषित करते रहे। मंडली के कई लोगों ने होपनी और पीनहास की भ्रष्ट युक्ति पर क्रोधित होकर आराधना के नियुक्त स्थान पर आना बंद कर दिया। इस रीति से जिस धर्म क्रिया को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था वह दुष्ट मनुष्यों के पापों से संबद्ध होने के कारण घृणित और उपेक्षित हो गई, और वे जिनके हृदयों का झुकाव बुराई की ओर था उन्हें पाप करने के लिए प्रोत्साहन मिला। अधर्म, भ्रष्टाचार और मूर्ति पूजा भी व्यापक रूप से प्रचलन में थे। अपने पुत्रों को पवित्र स्थान में सेवा टहल करने की अनुमति देकर बहुत बड़ी गलती की थी। किसी न किसी बहाने उनकी गतिविधियों को क्षमा करके वह उनके पापों के प्रति अंधा हो गया, लेकिन फिर अंत में वे वहां पहुंच गए जहां वह अपने पुत्रों के अपराधों से आंखें न चुरा सका। लोगों ने उनके हिंसक कृत्यों की शिकायत की और महायाजक अत्यंत खेदित और शोकित हुआ। अब वह चुप न रह सका, लेकिन उसके पुत्रों की परवरिश ऐसे हुई थी कि वे स्वयं के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचते थे, और अब उन्हें और किसी की चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के दुख को देखा, लेकिन उनके कठोर हृदय विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसकी विनम्र ताड़ना को सुना, लेकिन वे प्रभावित नहीं हुए। हालांकि उन्हें उनके पापों के परिणाम के लिए भी चेतावनी दी गई, उन्होंने बुराई का चाल चलन नहीं बदला। यदि एली ने अपने दुष्ट पुत्रों के साथ न्याय संगत व्यवहार किया होता तो उन्हें याजकीय कार्यभार से निकाल दिया गया होता और उन्हें मृत्युदंड दिया जाता। उन पर सार्वजनिक अपमान और दंडादेश से बचाने के लिए उसने उन्हें पवित्र पदों पर आसीन रहने दिया। उसने अपने पुत्रों द्वारा परमेश्वर की पवित्र आराधना में भ्रष्टाचार को सम्मिलित होने दिया और सत्य के विषय पर उस चोट को आघात करने दिया जिसके निशान कई वर्षों तक मिटाए जा सकें। लेकिन जब इसराइल के न्यायाध्यक्ष ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, परमेश्वर ने इस विषय को अपने हाथ में ले लिया। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास आया और उससे कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वंश में था तब मैं उस पर निश्चय प्रकट नहीं हुआ था, और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के सारे बलि भेंट ना दिए थे? इसलिए तुम उन बलि भेंटों और अन्न बलियों को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है पांव तले क्यों रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर देता है कि तुम लोग मेरी इसराइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खाकर मोटे हो जाओ? इसलिए इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषिक्त के आगे हमेशा चलेगा। परमेश्वर ने एली पर आरोप लगाया कि वो अपने पुत्रों को प्रभु से अधिक सम्मान करता था। जिस भेंट को परमेश्वर ने इसराइल के लिए आशीष के रूप में नियत की थी, एली ने उसे घृणा का पात्र बना दिया, जबकि उसे अपने पुत्रों को उनके घृणास्पद और अधर्मी चाल चलन के लिए लज्जित करना चाहिए था। जो अपने बच्चों के प्रेम में अंधे होकर उनकी अपनी ही इच्छा के अनुसार उन्हें उनकी स्वार्थपूर्ण मनोकामनाओं की संतुष्टि करने देते हैं और बुराई को सुधारने और पाप की निंदा करने के लिए परमेश्वर के प्रभुत्व का प्रयोग नहीं करते। वे ये प्रकट करते हैं कि जितना सम्मान वे परमेश्वर का करते हैं, उससे अधिक सम्मान वे अपने बच्चों का कर रहे हैं। वे परमेश्वर को गौरवान्वित करने के बजाय अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अधिक चिंतित होते हैं। वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के इच्छुक होने के बजाय अपने बच्चों को प्रसन्न करने के अधिक इच्छुक होते हैं। परमेश्वर ने एली को उसके लोगों की नैतिक और धार्मिक स्थिति और विशेष रूप से उसके पुत्रों के चरित्र के लिए उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि एली इज़राइल का न्यायाध्यक्ष और एक याजक था। उसे सर्वप्रथम नम्र उपायों द्वारा बुराई पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन यदि ये सफल नहीं होते तो उसे कठोर साधनों को अपनाकर पाप को रोकना चाहिए था। पाप की निंदा न करके और पापी को दंडित न करके उसने प्रभु को अप्रसन्न किया। इज़राइल को शुद्ध रखने के लिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। जिनमें गलतियों की कटु आलोचना करने का बहुत कम साहस होता है, या जो अपने आलस या उदासीनता के कारण परमेश्वर की कलीसिया या अपने परिवार को शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं करते, वे उस बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं जो कर्तव्य की उपेक्षा के कारण उत्पन्न हो सकती है। उन बुराइयों के लिए जिन्हें हम याजकीय या पैतृक अधिकार से रोक सकते थे, हम उसी प्रकार उत्तरदायी हैं मानो वो कृत्य हमने किए हो। एली ने अपने परिवार के पारिवारिक संचालन के लिए परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं चलाया, उसने अपने निजी निर्णयों का अनुसरण किया। प्रेम ही प्रेम में पिता अपने पुत्रों के बचपन में उनके द्वारा किए गए पाप और गलतियों को अनदेखा करता रहा और स्वयं को इस बात से संतोष दिलाता रहा कि उनके बड़े होने पर उनकी पापमय प्रवृत्ति दूर हो जाएगी। कई आज भी यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए परमेश्वर के वचन में दिए गए तरीके से बेहतर तरीका उनके पास है। वे उनमें गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं और ये बहाना लगाकर आग्रह करते हैं, अभी ये दंड भुगतने के लिए बहुत छोटे हैं, इनके बड़े होने तक ठहर जाओ, फिर इनके साथ तर्क वितर्क किया जा सकता है। इस प्रकार गलत आदतों को परिपक्व होने के लिए छोड़ दिया जाता है और वे उनका अतिरिक्त स्वभाव बन जाती है। बच्चे बिना नियंत्रण के चरित्र के उन अवगुणों के साथ बड़े हो जाते हैं जो उनके लिए एक आजीवन श्राप की तरह होते हैं और अन्य लोगों में भी उत्पन्न हो सकते हैं।
घरानों पर इससे बड़ा श्राप नहीं हो सकता कि नौजवानों को मनमानी करने की अनुमति दी जाए। जब अभिभावक बच्चों की प्रत्येक इच्छा को मान लेते हैं और जानते हुए भी उन्हें वो करने देते हैं जो उनके लिए हानिकारक हैं, तो बच्चे उनका आदर करना छोड़ देते हैं। वे परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के अधिकार का भी सम्मान नहीं करते और शैतान की इच्छा के वश में हो जाते हैं। एक अव्यवस्थित परिवार का प्रभाव समस्त समाज के लिए अनर्थकारी और व्यापक होता है। वो एक बुराई के ज्वार के समान बढ़ जाता है और परिवारों, समाजों और सरकारों पर दुष्प्रभाव डालता है। एली के पद के कारण उसका प्रभाव सामान्य मनुष्य के प्रभाव से अधिक विस्तृत था। संपूर्ण इज़राइल में उसके पारिवारिक जीवन का अनुकरण किया जाता था। उसके उपेक्षापूर्ण और अनुशासनहीन तरीकों के अनिष्टकर परिणाम उन सैकड़ों घरों में दिखाई दिए जो उसके उदाहरण अनुसार ढल गए थे। यदि बच्चों को कुकर्मों में व्यस्त होने दिया जाता है और माता पिता तथा कथित धार्मिक बने रहते हैं, तो परमेश्वर का सत्य निंदनीय ठहरता है। एक घर या एक परिवार की मसीहत की सबसे उत्तम पहचान उसके प्रभाव से उत्पन्न चरित्र की विशिष्टता में होती है। कर्म धार्मिकता के सबसे सकारात्मक व्यवहार से अधिक प्रभावशाली होते हैं। यदि धर्मगुरु परमेश्वर में विश्वास के लाभ के साक्षी के रूप में एक सुव्यवस्थित परिवार की परवरिश के लिए सच्चे मन से निरंतर और अत्यंत सावधानी से प्रयास करने के बजाय अपने शासन में आचार भ्रष्ट और अपने बच्चों की बुरी आदतों के प्रति नम्र होते हैं, तो वे एली जैसे कर्म कर रहे हैं और मसीह के उद्देश्य का अपमान कर रहे हैं और स्वयं को और अपने परिवारों को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में पैतृक अनिष्ठा का पाप गंभीर है, परंतु यही पाप 10 गुना अधिक बड़ा है जब ये उनके परिवारों में विद्यमान होता है जिन्हें प्रजा के गुरुओं के तौर पर नियुक्त किया गया है। जब ये अपने परिवारों को नियंत्रण में रखने में असफल होते हैं, तब अपने गलत उदाहरण से वो कई लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं।
उनका अपराध दूसरों के अपराध से बड़ा है, क्योंकि उनका पद अधिक उत्तरदायी है। ये प्रतिज्ञा की गई थी कि हारून का परिवार सदैव परमेश्वर के आगे आगे चलेगा, लेकिन इस प्रतिज्ञा की शर्त ये थी, उन्हें अपने विकृत रुझानों का अनुसरण या स्वयं को संतुष्ट ना करके अपने चाल चलन से परमेश्वर को महिमा पहुंचानी थी और हृदय की एक निष्ठता से मिलाप वाले तंबू के कार्य के लिए समर्पित होना था। एली और उसके पुत्रों को परखा गया और प्रभु ने उनको उसकी सेवा टहल या धर्मक्रिया में याजकों के उत्कृष्ट पदों के लिए पूर्णतया अयोग्य पाया। परमेश्वर ने घोषणा की, मुझसे दूर हो जाओ। वो उनके लिए वैसा नहीं कर सका जैसा वो चाहता था, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। जो पवित्र कार्यों में कार्यरत होते हैं, उनका उदाहरण ऐसा होना चाहिए जो लोगों को परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और उसकी आज्ञा के उल्लंघन के प्रति भय से प्रभावित करे। जब मनुष्य पुनर्मिलाप और करुणा संबंधित परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए मसीह के स्थान पर खड़े होकर अपनी पवित्र बुलाहट का प्रयोग अपनी कामुक या स्वार्थपूर्ण तृप्ति के लिए आवरण के तौर पर करते हैं, तो वे स्वयं को शैतान के सफल कमक या कार्यकर्ता बना लेते हैं। होपनी और पीनहास की भांति वे मनुष्य से परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करवाते हैं। वे कुछ समय के लिए गुप्त रूप से अपने दुष्ट कर्म कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार जब उनका वास्तविक चरित्र सामने आता है, तब लोगों के विश्वास को ऐसा झटका लगता है कि उनका धर्म पर से विश्वास उठ जाता है। उनका मन उन सब पर संदेह करने लगता है जो परमेश्वर के वचन को सिखाने में आस्था दिखाते हैं। मसीह के सच्चे दास के संदेश को संदेह के साथ ग्रहण किया जाता है। ये प्रश्न लगातार उठता है, कहीं ये व्यक्ति भी उसकी तरह तो नहीं होगा जिसे हमने इतना पवित्र समझा, लेकिन वो इतना भ्रष्ट निकला। इस प्रकार मनुष्य की आत्मा पर से परमेश्वर के वचन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने पुत्रों को दी गई एली की फटकार में एक गंभीर और भयावह संदेश है, वो संदेश जिस पर उन सबको मनन करना चाहिए जो पवित्र कार्यों में कार्यरत है। यदि एक मनुष्य दूसरे के विरुद्ध पाप करे तो न्यायी उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? यदि उनके अपराधों से केवल उनके सहवासियों को आघात पहुंचा होता तो न्यायाध्यक्ष ने अर्थदंड नियत करके और क्षतिपूर्ति मांगकर सुलह करवा दी होती और उस प्रकार दोषी को क्षमादान मिल जाता। और यदि वे धृष्ट पाप के दोषी होते तो उनके लिए पाप बलि का चढ़ावा चढ़ा दिया जाता, लेकिन पाप बलि चढ़ाने में सर्वोच्च परमेश्वर के याजकों के तौर पर उनकी सेवा टहल के साथ उनके पापों का ऐसा ताना बाना था कि प्रजा के सम्मुख परमेश्वर के कार्य इतना दूषित और तिरस्कृत हुआ कि उनके लिए कोई प्रायश्चित स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उनका अपना पिता महायाजक होते हुए भी उनके पक्ष में मध्यस्थता करने का दुस्साहस न कर सका, वो उन्हें पवित्र परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचा सका। समस्त पापियों में वे सबसे अधिक दोषी है जो उन साधनों की उपेक्षा करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने मनुष्य के छुटकारे या उद्धार के लिए प्रदान किया है। जो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिट कूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट रूप से उस पर कलंक लगाते हैं। इब्रानियों 6:6।